ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान के सागर शिव बाबा के हम सभी प्यारे बच्चे हर रोज बाबा से नई नई बातें सुनते हैं। आज की मुरली में तो बाबा ने पुरानी दुनिया को भूलने और नई दुनिया से बुद्धि योग लगाने की बात कही। पुरानी दुनिया को भूलने के लिए दो बातें चाहिए। पहली बात चाहिए बेहद की वैराग्य वृत्ति और दूसरी बात चाहिए ईश्वरीय पढ़ाई का नशा या ईश्वरीय पढ़ाई से जो प्राप्तियां होती हैं उनका नशा। तो बाबा की पढ़ाई के मुख्य चार सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा है राजयोग, तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा और चौथा है ईश्वरीय सेवा। अभी हम सीरियल वाइज देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से हमें क्या मिलता है। जैसे पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान, तो प्यारे बाबा ने ज्ञान दिया। असल में तो सारे बाकी के जो सब्जेक्ट है उनका आधार भी ईश्वरीय ज्ञान ही है, क्योंकि जब तक ज्ञान का स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक योग भी नहीं लगेगा, धारणा भी नहीं होगी और ज्ञान भी ईश्वरीय ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, निखालस ज्ञान है। तो इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है, जिसको बाबा कहते हैं ज्ञान माना समझ। और जब व्यक्ति को समझ आ जाती है तो वो किसी भी आकर्षण में फंसता नहीं है, किसी भी बंधन में बंधता नहीं है, निर्बंधन रहता है। तो ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति है आकर्षणों से मुक्त निर्बंधन जीवन। अब हम देखें कि हमको ये प्राप्ति हुई है, क्या हम सचमुच आकर्षणों से मुक्त हुए हैं? इंद्रियों के आकर्षण, पास्ट लाइफ के आकर्षण, देहधारियों के आकर्षण, बहुत प्रकार के आकर्षण। तो जब हमको ये ज्ञान मिल गया, समझ आ गई कि ये जितनी भी आकर्षित करने वाली चीजें हैं ये टेम्परेरी हैं, दुखदाई हैं, नष्ट होने वाली हैं, धोखा देने वाली हैं, तो समझ के आधार पर हमारा मन इनसे विरक्त हो गया। जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं सारा दिन, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब आप कर्म क्षेत्र पर आते हो तब आप में कितना ज्ञान आया है उस ज्ञान की परीक्षा होती है। लौकिक पढ़ाई में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका एक लिमिटेड सिलेबस होता है और उस सिलेबस में से उनके मान लीजिए 10 प्रश्न आते हैं, उसमें ऑप्शन होता है 10 में से अगर आप 5 भी करेंगे तो भी चलेगा, और उन 5 में से भी अगर किसी ने 3 ही प्रश्न किए तो भी उसको कम से कम पास मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, इतनी सारी छूट होती है। लेकिन बाबा की पढ़ाई में कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है कि जो बात आएगी वो इतने सी किताब में से आएगी या जो बात आएगी वो केवल इतने दायरे की आएगी। जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो कोई भी बात, कैसी भी बात, किसी भी प्रकार की बात हमारे सामने आ सकती है। अर्थात ये पढ़ाई बेहद की है और इसका जो प्रश्न पत्र है वो भी बेहद का है। और जो प्रश्न आते हैं वो आकर्षणों के रूप में आते हैं, पुराने भाव स्वभाव के रूप में आते हैं, बंधन जो आत्मा के ऊपर हैं वो विभिन्न तरीकों से हमारे सामने आते हैं। तो अगर उसमें विजयी बने इसका मतलब हमको ज्ञान पक्का है, हमें परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिल गया। परमात्मा सर्वोच्च है, परम सुंदर है, परम ज्ञानी है, सर्वशक्तिवान है, सबसे अधिक अपना है, विश्वास पात्र है। जब हमको ये ज्ञान मिल गया तो कर्म क्षेत्र पर जो अनेक आकर्षण आए, किसी की विशेषता पे आकर्षित हो गए, किसी के गुणों पे आकर्षित हो गए, किसी की वाणी अच्छी लगी, किसी का कर्म अच्छा लगा, क्यों? जबकि हमको मालूम है कि ये सब कुछ देने वाला तो शिव बाबा है, और जबकि हमको मालूम है कि जो सबसे ऊंचा मिल गया तो उसके बाद इन छोटी छोटी बातों में हम क्यों जाएं? भक्ति मार्ग में एक सूरदास नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने कविता लिखी है। उस कविता में एक लाइन है, सूरदास प्रभु काम धेनु छोड़ छेरी को दुहावे। अर्थात जिसको काम धेनु मिल जाए तो वो किसी बछड़ी किसी साधारण सी गाय से कोई मांग क्यों करेगा? काम धेनु तो सर्व कामनाएं पूर्ण करने वाली है। तो जिसको भगवान मिल गया, भगवान का सच्चा परिचय मिल गया, सर्व गुणों का भंडार मिल गया, सर्व सिद्धि दाता मिल गया, भाग्य विधाता मिल गया, बिगड़ी बनाने वाला मिल गया, तो उसको जानकर उससे संबंध जोड़कर फिर वो किसी आकर्षण में क्यों जाएगा? तो जिसको पक्का निश्चय है कि मैं बाबा का हूं, मुझे बाबा मिल गया, कार्य व्यवहार में ना उसे कोई बंधन आएगा ना कोई आकर्षण आएगा। हमारी माताएं बहनें जब भोजन बनाती हैं किचन में, तो ये भी तो सारे दिन भर का काम है ना, भोजन बनाना भी दिनचर्या का एक अंग है, तो एक बहुत अच्छा काम करती हैं। जो बर्तन गर्म होता है ना उसको सीधा नहीं पकड़ती है, कभी भी पकड़ते हो बीच में क्या रखते हो? कपड़ा रखते हो बीच में या पकड़ रखते हो बीच में? ऐसा क्यों? सबको पता है अगर सीधा हाथ लगाया तो हाथ जल जाएगा। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को सिखाया, ईश्वरीय ज्ञान ने हम बच्चों को सिखाया कि किसी भी लौकिक चीज को सीधा मत पकड़ो, किसी भी लौकिक संबंध को, लौकिक पदार्थ को सीधा मत समझो कि ये मेरा है। बीच में किसको रखो? जहां जैसे हमने वहां कपड़े को बीच में रखा तो हाथ जला नहीं, ऐसे बीच में किसको रखो? बाबा को रखो, बाबा का है। पदार्थ है तो भी बाबा का है, और अगर कोई संबंध है तो भी बाबा का है, शरीर है तो भी बाबा की सेवा के लिए इंस्ट्रूमेंट है, मानत है, तो बच गए बंधन से, आत्मा जली नहीं। तो ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति है कि कर्म करते भी हम बंधन से मुक्त रहेंगे, कर्म करते भी लेप छेप नहीं लगेगा, कर्म करेंगे लेकिन न्यारे और प्यारे डिटैच होकर के कर्म करेंगे। ये बिना ईश्वरीय ज्ञान के ये खासियत आ नहीं सकती, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान में वो ताकत है। जैसे कहते हैं जल के बीच में रहा पर जल ने छुआ भी नहीं, विज्ञान ने एक ऐसी घड़ी बनाई, पानी में डाल दी, पानी का असर नहीं हुआ, ऐसी जैकेट बनाई, बुलेट लगी लेकिन बुलेट का असर नहीं हुआ। तो जैसे साइंस ने ऐसी चीजें बनाई, ऐसी ईश्वरीय ज्ञान अर्थात साइलेंस की शक्ति ऐसी है कि हम लौकिक संबंधों के बीच में हैं लेकिन छूते नहीं हैं, अपना प्रभाव नहीं डालते, हम उनमें फंसते नहीं हैं, उनके बीच में रहते भी न्यारे रहते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान जो हमारा पहला सब्जेक्ट है उसकी प्राप्ति है। पदार्थों को यूज किया लेकिन यूज किया और फुल स्टॉप लगा दिया, ना उनकी चर्चा, ना उनका चिंतन, ना उनका वर्णन, ना उनका दिखावा, ना उनका ईगो, यूज किया, काम निकाला और फुल स्टॉप लगा दिया। जिसको बाबा ने कहा साधन आपकी साधना को बिगाड़े नहीं, तो ये हमको चेक करना है कि क्या इस पहले सब्जेक्ट की प्राप्ति मुझे हुई है। अगर मैं बार बार बंधनों में बंधता हूं, इसका मतलब मुझे ईश्वरीय ज्ञान ही पक्का नहीं हुआ अभी, शिव बाबा पे निश्चय नहीं हुआ अभी। अगर कर्म बंधन बांधते हैं, पदार्थ खींचते हैं, इसका मतलब भगवान पे निश्चय कहां हुआ? अगर पक्का निश्चय है तो ये चीजें मन को बांध नहीं सकती हैं। तो एक मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाइए और चेकिंग कीजिए कि कार्य व्यवहार के दौरान देह के संबंध और देह के पदार्थ कितना खींचते हैं, कितना बांधते हैं। अपनी चेकिंग कीजिए, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे। ओम शांति। अच्छा, मान लीजिए हमारे मन में ये उत्तर आया कि थोड़ा थोड़ा संकल्प चलते हैं, या थोड़ा थोड़ा लगाव जाता है, या थोड़ा थोड़ा कोई कोई चीज किसी किसी इंद्री को खींचती है, तो इसका समाधान क्या हो? बाबा ने समाधान क्या बताया? बाबा बिंदु है। जब आप किसी भी संख्या के बीच में बिंदु रख देते हैं, दो संख्याओं के बीच में, तो क्या होता है? जैसे मान लो 11 है और 11 के बीच में बिंदु आ जाए तो क्या हो जाता है? मान लो 12 है, 12 के बीच में बिंदु आ जाए तो देखो कितनी ताकत बढ़ गई। तो जब बीच में बिंदु आ जाता है, मैं इधर हूं और मेरा संबंध सामने है, बीच में अगर शिव बाबा आ जाए तो हमारी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, और बाबा बीच में से निकल जाए तो शक्ति कम हो जाएगी। पदार्थ भी ऐसे ही, अगर बीच में बाबा आ गया और फिर हमने उस चीज को यूज किया तो शक्ति कई गुना, प्राप्ति कई गुना, वो चीज निर्विघ्न हो जाएगी। बाबा को जब हम कोई भी चीज समर्पित कर देते हैं, कोई भी साधन, जैसे बाबा ने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि जो लोग पहले युद्ध के मैदान में जाते थे और शस्त्र लेकर के जाते थे, तलवार भाला, तो वो देवी को समर्पित कर देते थे, और समर्पित करने के बाद जब उस तलवार को वापस उठाते थे तो उन्हें लगता था कि ये देवी ने हमें दी है, इसलिए अब ये तलवार हमारी नहीं है, ये देवी की तलवार है, और अब इसमें देवी की शक्ति आ गई है, ये भाला अब हमारा नहीं है, इसमें शक्ति आ गई। तो बाबा ने कहा ऐसे जब आप किसी भी साधन को यूज करते हो, साधन तो बहुत प्रकार के सेवा में हम यूज करते हैं, उस साधन को अगर आप बाबा को समर्पित कर देते हो, ये बाबा का है, और उसके बाद उसको यूज करते हो, तो वो भी बाबा का होने के नाते निर्विघ्न हो जाता है, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। संबंध भी ऐसे ही। तो हम क्या करेंगे, हर काम में, हर बात में, चाहे वो लौकिक कार्य भी हो, बाबा ने कहा लौकिक कार्य भी वास्तव में अब लौकिक नहीं है, क्योंकि आप बच्चे अलौकिक हो गए तो वो भी अलौकिक हो गया है, कोई भी कार्य हो उसमें हम बाबा को यूज करेंगे तो हमारा ना बंधन बंधेगा और ना हमारे संकल्प चलेंगे, हम निर्विघ्न बन जाएंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट है मेडिटेशन, राजयोग। बाबा ने कहा जो योगी बच्चे हैं, उन योगी बच्चों की निशानी क्या होगी, अर्थात योग के सब्जेक्ट की प्राप्ति क्या होगी? अंदर बाहर एक, पारदर्शी, जिसको बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई, या जिसे बाबा कहते हैं करनी कथनी एक, सोचा वही बोला और वही किया, ये केवल मेडिटेशन से आ सकता है। व्यक्ति बाहर भीतर एक हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पारदर्शी होना। आजकल तो देखो लोगों को पारदर्शी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मकान में कितना हम कांच यूज करते हैं ताकि सब कुछ आर पार दिखे। तो ऐसे ही जीवन भी तो आर पार दिखने वाला होना चाहिए ना। अगर संकल्पों में कुछ और है और कर्म में हम कुछ और कर रहे हैं तो बहुत कम सफलता मिलती है, क्योंकि दोनों एक नहीं हुए। इसके लिए भी किसी ने लौकिक जीवन में कविता लिखी है, करनी बिन कथनी ज्यों शशि बिन रजनी भूषण बिन सजनी। अर्थात हम केवल कह देते हैं और करते नहीं है, सोचते हैं और करते नहीं है। तो ये ऐसे ही है जैसे चंद्रमा के बिना रात और जैसे बिना गहनों के कोई नारी, सजावट नहीं होती है। तो व्यक्ति की भी सजावट तब होती है जब उसके भीतर और बाहर की समानता होती है। वो कहता बहुत कुछ है, बोलता बहुत कुछ है, सुनाता बहुत कुछ है, वर्णन बहुत कुछ करता है, लिखता भी बहुत कुछ है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था तो उसे ऐसे बोलने की बहुत नेचर थी, वर्णन बहुत करता था। अपने जो गुरु भाई थे उनको कहता रहता था, आज मैंने इतनी माला जपी, आज मैंने इतने मंत्र जपे, आज मैं इतने बजे उठा, अमुक जगह मैंने इतना बढ़िया प्रवचन किया, ऐसे ऐसे बहुत बोलता था। तो महात्मा बुद्ध को उस पे रहम आया। महात्मा बुद्ध को तो कहते ही है करुणा का अवतार। जब कोई ऐसी बात करता है तो आमतौर पे लोगों को गुस्सा आता है, गुस्सा आता है ना, ये करता कुछ नहीं है, देखो बोलता कितना है। लेकिन महात्मा बुद्ध को क्या आया? रहम आया। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे लौकिक दुनिया में दुखी लोगों को देख के आपको रहम आता है ना, ऐसे अलौकिक दुनिया में अगर आपको किसी का कोई अवगुण, कोई कमी, कोई कमजोरी दिखाई देती है तो उस पर भी आप रहम करो, गुस्सा मत करो। तो महात्मा बुद्ध को भी रहम आया। तो एक दिन उसने उसको बुलाया और बहुत सारी गवें जा रही थी रास्ते में। उस जमाने में तो गवें बहुत पाली जाती थी, एक एक व्यक्ति के पास सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों गवें होती थी, पशुधन उस जमाने में एक बहुत बड़ा धन हुआ करता था। तो किसी व्यक्ति की कई गायें सड़क रास्ते में जा रही थी, तो महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को कहा जरा गिनती करो ये गाय कितनी है। तो गिनती करने में तो बहुत होशियार था, उसने फटाफट गिनती करके बोला ये गवें तो 394 है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अच्छा ये गिनती करने से गाय तुम्हारी हो गई क्या? बोला नहीं बनते, मेरी कैसी हो गई? तो बोला गवों को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा भंते इनको अपना बनाने के लिए तो इन्हें पहले खरीदना पड़े, फिर इतना बड़ा एक कोई स्थान बनाना पड़े, फिर कोई शेड कोई इनके लिए कोई छप्पर बनाना पड़े, उसके बाद कोई दूध दुहने वाला, कोई चारा खिलाने वाला, फिर चारे के लिए भी गोदाम, ये तो बहुत बहुत कुछ करना पड़े। तो महात्मा बुद्ध ने कहा तुम भी जो कहते हो ना कि मैंने इतनी माला जपी, तो क्या कहने मात्र से माला जपी गई? तुम भी कहते हो ना मैंने इतने मंत्र जपे, तो क्या कहने मात्र से मंत्र जपे गए? तुम कहते हो ना मैं 2 बजे उठा, क्या कहने मात्र से वो साधना तुम्हारी हो गई? साधना को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे गवों को अपना बनाने के लिए इन पे मेहनत करनी पड़ेगी, पालना देनी पड़ेगी, ऐसे ही साधना को भी अपने भीतर उतारने के लिए केवल कहना नहीं लेकिन करना पड़ेगा। तो उसको समझ में आया कि मैं सिर्फ कहता हूं, कहने से क्या होगा? सिर्फ कहना तो ऐसे है जैसे किसी आदमी ने मकई बोई नहीं और कईयों को निमंत्रण दे दिया मेरे खेत में भुट्टे खाने आ जाना। अब जब बीज बोया ही नहीं तो कोई भुट्टे खाने जाएगा तो उसे मिलेगा क्या? निमंत्रण कब देना चाहिए भाई भुट्टे खाने का? पहले बीज बो तभी तक भी नहीं, फिर उसे थोड़ा बड़ा पौधा होने दो, उसके बाद उसको फल लगने दो और फल को पकने दो, इतना इंतजार करना पड़ेगा कहने के लिए। और इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं बीज बोने के बाद, और जब भुट्टे पक्के तैयार हो गए फिर हम किसी को निमंत्रण देंगे, भाई आओ भुट्टे खा लो। हम क्या करते हैं, बीज बोने से पहले मैं बीज बोऊंगा और खेत बोऊंगा और मैं तुमको बुलाऊंगा और तुम भुट्टे बोने खाने आना, बीज बोया ही नहीं, वो निमंत्रण तो हवा में ही रह गए। इसलिए जो योगी है उसकी निशानी क्या है, पहले कहना फिर करना, क्या निशानी है, पहले करना उसके बाद कहना। जब हम पहले करते नहीं है तो हमें कई बार कहना पड़ता है, मैं करूंगा ऐसे, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, और जब हम पहले कर लेते हैं तो उसके बाद केवल एक ही बार बोलना पड़ता है, हाँ मैंने कर दिया, तो हमारी बोल की एनर्जी भी बच जाती है। लेकिन इतनी शक्ति कब आती है व्यक्ति में, जब उसका लिंक बाबा से जुड़ा है, क्योंकि जब अतिंद्रिय सुख मिल रहा है, जब उस सर्वशक्तिवान से शक्ति मिल रही है, तो व्यक्ति को कोई दिखावा करने की या कोई अपनी झूठी प्रशंसा करने की या किसी के आगे बात को बड़ा चढ़ा के कह करके अपना थोड़ा प्रभाव जमाने की जरूरत ही नहीं रहती। उसको जो चाहिए वो भीतर से तृप्त है, क्योंकि उसे इतना ईश्वरीय आनंद मिल रहा है, उसको लगता है कि मैं तो सर्वशक्तिवान की गोद में बैठा हूं और उस सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियों का उत्तराधिकारी हूं, उसने बिना मांगे मुझे सारा वर्षा दे दिया है। तो जब मैं इतनी बड़ी प्राप्ति करके बैठा हूं, बाबा ने मुरली में कहा था कि जिन बच्चों को ये नशा है कि मैं बाबा का दिल तख्त नशीन हूं, बाबा की गोद पे विराजमान हूं, उन बच्चों के लिए बाबा कहते हैं, उन बच्चों की बाबा, उन बच्चों के उस नशे की बाबा वर्णन करते हैं कि जाओ दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को देख लो, किसी और बड़े महामंडलेश्वर को देख लो, किसी नामी गिरामी को देख लो, अगर उसके जीवन में भी इतना सुख हो जितना मेरे एक दिल तख्त नशीन बच्चे के जीवन में सुख होता है, खुशी होती है, आनंद होता है, मौजों की जीवन होती है, चैलेंज करता है बाबा दुनिया को ढूंढ लो अगर इतना मौजों का जीवन किसी का हो तो उसको इतना भीतर से आनंद आता है, इतना वो भरपूर रहता है कि मैं तो आलमाइटी की गोद में हूं और आलमाइटी ने मुझे सारी शक्तियां दे रखी हैं, तो वो उस आनंद में खोया रहता है और उस आनंद से उसका जीवन महकता रहता है। उसको फालतू बोलने की या किसी से कंपैरिजन करने की या किसी के ऊपर प्रभाव जमाने की भावना ही पैदा नहीं होती है, वो अपने में मस्त रहता है, मुझे क्या मिला, मैंने जो सोचा उससे कई गुना मुझे मिला। और संग का रंग लगता है, बाबा कैसा है, एकदम सच्चा, एकदम निखालस, एकदम प्योर, तो जब बुद्धि का लिंक उनके साथ होगा तो आत्मा भी कैसी बनेगी, एकदम बेदाग, प्योर, चमकदार, जो भीतर होगा वो झट बाहर मुख से निकलेगा और वो जीवन एकदम पारदर्शी होगा, और उस जीवन में किसी तरह की भीतर कोई कॉम्प्लिकेशन होंगे ही नहीं, कोई ठगी, कोई झूठ, कोई भय, कोई चिंता, कोई दुराव, छिपाव, किसी भी प्रकार का कोई संशय, जो मेंटेलिटी होगी वो एकदम क्लियर होगी। जैसे एक छोटे बच्चे की मेंटेलिटी कैसी होती है और उसके चेहरे पे कितनी मासूमियत होती है, तो एक दिल तख्त नशीन बच्चे का चेहरा भी ऐसा ही होगा, मासूमियत झरेगी उसके चेहरे से, पवित्रता झरेगी, और उसको देख करके उसकी बातों से एकदम फेथ आएगा कि इसका लिंक जुटा पड़ा है, कैसे ये बाबा 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 मेरा बाबा कैसे बाबा बाबा में खोया हुआ है। तो ये है कौन से सब्जेक्ट की निशानी, राजयोग की निशानी, पारदर्शी। तो चलिए 2 मिनट हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की हमें कितनी प्राप्ति हुई है, 2 मिनट बाबा की याद में। रिजल्ट तो आया होगा मन में हर एक को अपना अपना। इस सब्जेक्ट में भी अगर कमी है तो बाबा ने उसकी हमें बहुत युक्तियां बताई हैं। आज भी बाबा ने कहा याद की यात्रा बार बार बीच बीच में चेक करनी है। थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा डायरी हाथ में रखो, अपना चार्ट देखते रहो कि मुझे बाबा की याद है, कितना बाबा को याद किया। कॉन्शियसनेस में बाबा बाबा बना रहना चाहिए, चलते फिरते महसूसता रहे कि जैसे बाबा आगे पीछे दाएं बाएं, जैसे बाबा साथ चल रहे हैं, बाबा सामने खड़े हैं। एक जैसे एक बच्चा कहीं जाता है तो उसको ये स्मृति रहती है कि बाप के हाथ में मेरा हाथ है, तो ऐसी हमको भी स्मृति बनी रहनी चाहिए कि हमारा बैकबोन कौन है, हम किसकी छत्र छाया में चल रही हैं, किसकी सेवा कर रही हैं, हमारे जीवन की जिम्मेवारी किसने ले रखी है, कौन हमारा जिम्मेवार है, हम जो भी कुछ कर रही हैं किसके लिए कर रही हैं, उसका उद्देश्य क्या है। ये अंदर ही अंदर जैसे हम संकल्पों में अपने आप से बातें करते रहते हैं, कर्म करते हुए भी ये कर्म मैं किसके लिए कर रहा हूं, ये बाबा की प्रत्यक्षता के लिए है, इस कर्म से मेरे बाबा की सेवा होगी, इस कर्म से बाबा ने हमें जो लक्ष्य दिया है मैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, तो ये भी बाबा की स्मृति है। और इसके लिए अभ्यास को पक्का करने के लिए जैसे बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले का टाइम बताया, अमृत वेले हम अभ्यास को पक्का करते हैं। जैसे पहले जमाने में लोग युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाते थे, तो शस्त्र चलाने का जो अभ्यास होता था वो कब करते थे, झांसी की रानी शस्त्र चलाने में बहुत होशियार थी, लेकिन क्या उसने युद्ध के मैदान में जाकर के शस्त्र चलाने सीखे, कब सीखे, बाल्यकाल में जब वो बहुत छोटी थी तब से उसने घुड़सवारी करना शस्त्र चलाना ये सब सीख लिया था। कब का सीखा हुआ उसको कब काम आया, जब वो बड़ी हो गई और जब उसने युद्ध किया, युद्ध तो बड़ा होने के बाद ही करेंगे ना। ऐसी इस ईश्वरीय जीवन में, इस एक दिन के जीवन में हमारा बाल्यकाल कौन सा है और हमारा स्टूडेंट लाइफ कौन सा है और हम अडल्ट कब हो जाते हैं, एक ही दिन में जब हम सुबह उठते हैं तो वो हमारा जन्म होता है। कहते हैं ना रात की जो नींद होती है वो आधी मृत्यु के समान। फिर सुबह जब हम उठे तो क्या हुआ, नया जन्म हो गया, अब हम बच्चे हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्मते ही कौन उसके सामने होता है, सबसे पहले बच्चे के सामने कौन होता है, उसकी माँ होती है। तो सबसे पहले उठते ही हमारे सामने भी कौन है, हमारी माँ है, हमारा पिता है। इसलिए बाबा ने कहा सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करो, आंख खुलते ही पहले गुड मॉर्निंग करो, अर्थात आंख खुली और माता पिता सामने आ गए। तो जो अमृत वेले का समय है वो हमारा बाल्यकाल है, फुल टाइम बाबा हमारे साथ है और माता पिता के रूप में हमारे साथ। बाबा ने कहा महारथी हो, प्यादा हो, घुड़सवार हो, उस समय बाबा किसी को नहीं देखते बस, अर्थात उस समय कोई कैटेगरी नहीं होती है, उस समय तो बस बाप है और बाप के बच्चे हैं और बाप का जो भी कुछ है वो सब कुछ बच्चों के लिए है। तो छोटे बच्चे को माँ बाप साथ रख करके सब बातों में एक्सपर्ट बनाते हैं ताकि ये जब बड़ा हो तो हमारा दिया हुआ इसको काम आए बड़ा होने के बाद। तो वो अमृत वेले का जो समय है वो हमारा बाल्यकाल है, जिसमें हम अपनी नींव मजबूत बनाते हैं माँ बाप के साथ रहे। उस समय कोई युद्ध का मैदान नहीं है, उस समय कोई परिस्थिति नहीं है, उस समय हमारे सामने कोई समस्या नहीं है, उस समय तो हमें केवल अपने में भरना ही भरना है ताकि ये भरा हुआ आगे काम आए। जैसे बाल्यकाल में बच्चों को हम सिखाते हैं, पास बैठ के होमवर्क करवाते हैं, स्कूल उंगली पकड़ के छोड़ के आते हैं, कैसे बोलना है, कैसे नहाना है, ये सब सिखाते हैं ताकि अब का सीखा हुआ फिर बड़ा होके ये अपने आप करेगा। तो उसे अमृत वेले हम अपने अंदर बल भरते हैं, सारी शक्तियां भरते हैं, वो हमारा बाल्यकाल है। और जब हम मुरली सुनने जाते हैं वो हमारा स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ पूरा हो गया एक घंटे में, दो घंटे में, कहीं एक घंटा होता है, कहीं दो घंटा होता है। और जैसे ही लौकिक दुनिया में बच्चे का स्टूडेंट लाइफ पूरा होता है फिर क्या होता है, उसके बाद तो उसको संसार की जिम्मेवारियां सौंप दी जाती है। बिजनेस संभालो, नौकरी करो, घर संभालो, खेती संभालो। तो जैसे ही स्टूडेंट लाइफ पूरा होता है, पूरा होते ही क्या हो जाता है, बाबा के बच्चे अडल्ट हो जाते हैं और अडल्ट होके कर्म क्षेत्र पे उतर आते हैं। तो मुरली पूरी होते ही क्या करना पड़ता है सबको, कार्य के लिए कर्म क्षेत्र पर जाना है। तो अब जब हम कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी, उन शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कौन सी शक्तियों की, जिनका अभ्यास हमने बाल्यकाल में किया था, अर्थात अमृत वेले जो शक्तियां हमने अपने में भरी थी। अब हम कर्म क्षेत्र पर गए तो कर्म क्षेत्र पर जाते ही भिन्न भिन्न बातें आएंगी, कोई बात सुननी पड़ेगी और कोई बात किसी को सुनानी पड़ेगी। तो अगर अमृत वेले हमने ये शक्तियां अपने में भरी होंगी तो वो स्टॉक फुल होगा और फिर वो हम यूज करेंगे। तो शक्ति भरने का समय है अमृत वेला। बाबा ने कहा अमृत वेले साधारण स्थिति में नहीं बैठो, लेकिन रात को तैयारी करके सो कि मुझे कल क्या अनुभूति करनी है, हर रोज एक नई अनुभूति करनी है। क्योंकि बाबा के पास इतना स्टॉक है, हम हर रोज एक अनुभूति करें तो भी संगम युग के जीवन में बाबा का स्टॉक खाली नहीं होगा। अनुभव कराने के लिए बाबा के पास इतनी चीजें, इतनी प्रकार के वरदान हैं, इतनी प्रकार की शक्तियां हैं, इतनी प्रकार के ज्ञान की पॉइंट्स हैं, इतनी प्रकार के गुण हैं। हर रोज हम एक नई चीज का अनुभव करें, भाई आज मुझे रहम दिल स्थिति का अनुभव करना है। जब मेरा बाप इतना रहम दिल है तो मेरे में कितना रहम होना चाहिए। आज मुझे समाने की शक्ति का अनुभव करना है। जब बाबा सारी दुनिया की सारी बातें समा लेता है, सागर समान है, सागर में भी देखो कितनी नदियों का किचड़ा आके पड़ता है, सागर कभी नहीं कहता तुमने मुझे किचड़ा दिया तो मैं वापस तुमको किचड़ा ही दूंगा। उसने किचड़ा ले लिया और वो दिखाया भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं, पता नहीं कहाँ गया। और उसका ऊपर से जल स्वच्छ है, अब वो जब सूर्य की किरणें उससे जल खींचती हैं तो कितना स्वच्छ जल खींचती है, वो किचड़ा कहाँ गया पता नहीं। तो जब मेरा बाप सागर समान सब कुछ समा लेता है तो मुझे भी समा लेना, देखते हुए भी, जानते हुए भी, वर्णन नहीं करना, चित्त पे नहीं लाना, समाना है, रहम करना है, भुलाना है, माफ करना है, खुद भी आगे बढ़ना है, दूसरे को भी आगे बढ़ाना। तो इन सब शक्तियों को हम अपने में अमृत वेले भरेंगे तब हमें संतुष्टि मिलेगी कि देखो मुझे भगवान डायरेक्ट कैसी सिद्धियां दे रहा है, डायरेक्ट कैसी शक्तियां मिल रही हैं। लौकिक पढ़ाई में तो ये शक्तियां होती ही नहीं। लौकिक पढ़ाई में बच्चा कितने सर्टिफिकेट ले लेता है, एक एक बच्चे के पास इतने इतने सर्टिफिकेट होते हैं, लेकिन वही बच्चा जब कर्म क्षेत्र पर आता है तो फेल हो जाता है। कभी डिप्रेशन आता है, कभी तनाव आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सर्टिफिकेट लिए थे उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कर्म क्षेत्र पे काम आ जाए। अब उसके पास तो सर्टिफिकेट था घुड़सवारी का, अब यहां समस्या आ गई, वो प्रिंसिपल है कॉलेज का और उसके 30-40 स्टाफ है और वो असंतुष्ट है, काम चोर हैं, काम नहीं करते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, या छुट्टी बहुत लेते हैं, या नींद करते हैं क्लास में, या बच्चों के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या बच्चों के साथ पार्शियलिटी करते हैं। अब क्या करेगा वो बेचारा, घुड़सवारी करके दिखाएगा क्या उनको? या उसके पास सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छा भाषण करने वाला है, गाने वाला है, बजाने वाला है, तैरने वाला है, पेंटिंग करने वाला है, क्या करके दिखाएगा? इनमें से कौन सी चीज काम आएगी? अब यहां तो कौन सी शक्ति काम आएगी? कर्म क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर तो उसमें समाने की शक्ति हो, सहन शक्ति हो, या सहयोग की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति हो, मोल्ड होने की शक्ति हो, ये वाली शक्तियां काम आएंगी। तो ये सब शक्तियां हम अपने में अमृत वेले भरेंगे और दिन में भी बीच बीच में अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। जैसे कोई बहुत ज्यादा बीमार हो तो डॉक्टर उसको कहता है भाई तुम दिन में 5 बार गोली खाना, कम बीमार हो तो उसको कहेगा सुबह 1 बार खा लेना, बस सारा दिन तुम ठीक रहोगे। तो हमको भी देखना है, अगर सुबह वाली गोली खाने से सारा दिन हम ठीक रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो दिन में भी बार 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 बार, क्योंकि फिर मनोवृत्ति अपनी सीट से हट गई, फिर उसको सेट करना है, फिर हट गई, फिर सेट करना है। तो जब सारा दिन इस तरह से अभ्यास करेंगे, स्वस्थिति को मजबूत बनाएंगे। कल हमारी 2 दिन पहले हमारी एक बहन बहुत अच्छी क्लास करा रही थी, उसने सुनाया कि व्यक्ति का देह के संबंधों में इतना मोह नहीं होता है, लेकिन ज्यादा मोह किस में होता है? देह में होता है। क्यों? क्योंकि देह के संबंध तो फिर भी बट जाते हैं, जैसे माँ है तो उसको 4 लोग मां कह रही, तो हमारे इससे तो 25% ही आई, मां तो मां ही है लेकिन फिर भी 4 लोग हैं उसको मां कहने वाले। लेकिन ये जो शरीर है इसका तो और कोई मालिक है ही नहीं, इसके तो हम होली सोली एक ही मालिक। तो जिसके ऊपर 100% हक है उसमें मेरापन ज्यादा रहता है, और जिसपे हक बटा हुआ है उस पे थोड़ा हक कम रहता है। अच्छा मान लीजिए किसी माँ को बच्चा एक ही है, लेकिन उसका भाई है वो उसे बहन कहता है, उसकी माँ है वो उसे बेटी कहती है, पति है वो उसे पत्नी कहता है, कई संबंध है उसके, बेशक बच्चा एक है, बटा हुआ है शरीर तो कहीं भी नहीं बटा हुआ, ये तो दिन रात 24 घंटे पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो देह के संबंध से भी ज्यादा महत्व किसमें होता है? देह में होता है। इसलिए बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। पहले नाम किसका आया? देह का आया। इसको भूलो, इसको भूलोगे तो फिर उनको भी भूलोगे। और इसको भूलने का एक बहुत ही इजीएस्ट वे ये है कि आप देखिए आज हमारी आयु कितनी हो गई, हम 25, 30, 40, 50, 60 जितने के भी हो गई, जब से हमने अपनी आंखों से इसको देखा तब से आज तक ये कितना बदला, कितना बदला है। तो बदलता ही रहता है, बदलता ही जाता है, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, बदल रहा है ना। अच्छा जब आप 10 साल के थे वो वाला शरीर कहाँ है? कहीं उतार के रखा हुआ है क्या? दिखाओ उसे। 15 साल के थे तब वाला शरीर कहाँ है? कहीं रखा हुआ है भाई। कई बार कपड़े छोटे हो जाते हैं तो व्यक्ति रख लेता है, भाई ये कपड़ा छोटा हो गया, ये हो गया, तो शरीर भी छोटा हुआ होगा, कहीं उतार के रखा हुआ है क्या? मर गया वो, इसकी आदत है मरने की। जिसकी जो आदत होती है ना वो आदत प्ले होती रहती है, तो इसकी नेचर है मरना, ये मरणशील है, तो ये मरता रहता है। क्योंकि सेल जी तो है और क्या है, पुरानी सेल मरती है नई सेल आती है, तो पुरानी सेल मर गई माना पुराना शरीर मर गया। एक साल वाला, दो साल वाला, तीन साल वाला, दस साल वाला, बीस साल वाला मर गया। और ये भी इसका क्या होने वाला ये भी जाने, पर मैं वही हूं। एक साल का जब शरीर था तब इसमें जो आत्मा थी मैं वही हूं, दो साल वाले की भी मैं वही हूं, दस साल वाली मैं वही हूं, मैं नहीं मरी, ज्यों की त्यों, न छोटी न बड़ी न लंबी न चौड़ी, लेकिन ये तो बदल गए, तो मैं कौन हूं। और ये देखो देखते देखते अभी बदलेगा, हर चीज को आप बदलते हुए देखते हो, मकान को बदलते देखते हो, पेड़ को बदलते देखते हो, चीजों कपड़ों सब चीजों को बदलते देखते हो, ये भी बदल रहा है। तो इस मिटने वाले शरीर से क्या महत्व है, जिसकी नेचर ही मिटना है। आप लाख कोशिश करो कि ये मिटना छोड़ दे, ये अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। तो जिसको मरना ही है मिटना ही है, उस मिटने वाली चीज से भाई क्यों ममत्व? ममत्व तो उससे चाहिए जो कभी ना मिटे, तो वो मैं हूं, इसलिए मैं आत्मा हूं। मैं ना कभी मिटी थी ना कभी मिटूंगी, और ये ना कभी बना था ना कभी बनेगा, आज बना कल उल्टा इसका प्रोसीजर चालू हो जाएगा। तो सारा दिन मुझे क्या करना है, मेडिटेशन का अर्थात योग का आनंद लेने के लिए मुझे अपने आप को अपनी सीट पे सेट रखना, साक्षी होके देखना है, मजा आएगा उसमें। साक्षी होके सब दृश्य आते जाते देखो, इसको भी साक्षी होके देखो, हाँ मैं देख रहा हूं तुम बदल रहे हो, और बदलते बदलते अब तुम्हारा, आज हम अपने लास्ट रूप को देख सकते हैं, जब इसका लास्ट रूप आएगा तो कैसा होगा, कैसा होगा? लास्ट रूप वाले लोग बतेरे देखें, ये भी बेचारा वैसा ही हो जाएगा। तो इसके हम सारे रूप देख सकते हैं, जैसे बाबा ने आत्मा के 84 जन्मों की कहानी सुनाई ना, ऐसे इसके भी 84 सालों की कहानी है, इसकी भी अलग अलग कहानी है, ये भी 84 सालों में 84 रूप बदलता है, इससे भी ज्यादा ही रूप बदलता है। तो मैं कौन हूं? मैं अजर अमर साक्षियों के इसको बदलते हुए देखने वाली अविनाशी आत्मा हूं, इसको भी साक्षियों के देख रही हूं, दुनिया को भी बदलते हुए अब तक देखती ही आई हूं। कुछ तो बाबा ने दिखा दिया, कुछ मैंने देख लिया। बाबा ने जो दिखाया वो ज्ञान का नेत्र देखता है, सतयुग से दुनिया बदलती आई बदलती आई बदलती, देखो आज क्या रूप हो गया इसका। और इस शरीर को भी हम बदलते हुए देख रही हैं, लेकिन मैं वही पॉइंट ऑफ लाइट हूं। कलाएं तो आत्मा की बदल गई, अर्थात शक्ति तो कम हो गई, लेकिन उसका स्वरूप वही है, पॉइंट ऑफ लाइट ही है वो। तो सारा दिन जब हम इस स्थिति में सेट रहेंगे तो हमें योग का आनंद आएगा, वो सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा सुख है वो। बाबा कहते हैं उसके आगे सतयुग का सुख भी कुछ नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद है। संसार में रहते हुए भी सब चीजों से हम डिटैच है, निर्बंधन है, स्वतंत्र है, मालिक। दुनिया में लोग कहते हैं मैं धन का मालिक हूं, मैं मकान का मालिक हूं, मैं पोजीशन का मालिक हूं, मालिक का है, मालिक के ऊपर एक और मालिक होता है, फिर उसके ऊपर एक और मालिक होता है, फिर उसके ऊपर एक और मालिक होता है। दुनिया में तो कोई मालिक होता ही नहीं है, कोई धनवान भी है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट मालिक है, उसको डर लगा रहता है इधर से कोई छापा पड़ेगा, इधर से कोई छापा पड़ेगा। कोई पोस्ट के हिसाब से मालिक है, भाई ये अफसर है अधिकारी है, उसके ऊपर उससे बड़ा अधिकारी होता है। मालिक तो दुनिया में कोई नहीं, ये तो दासों की दुनिया है, सब दास और सबसे बड़े अपनी इंद्रियों के दास। अगर मालिक हैं तो केवल वो जो अपने स्वरूप में टिका है, जो स्वरूपस्थ है, केवल वही मालिक है, बाकी कोई मालिक नहीं। तो ये दूसरे सब्जेक्ट की प्राप्ति हम कैसे बढ़ाएं, और अब तीसरा सब्जेक्ट है हमारा दिव्य गुणों की धारणा। इसके लिए बाबा ने कहा था जिसमें दिव्य गुणों की धारणा होगी वो खुद भी संतुष्ट होगा और दूसरों को भी संतुष्ट करेगा। जहां सद्गुण है वहां संतोष है। सद्गुण व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं, जैसे हमारे में सहनशीलता है, इतनी सहनशीलता है कि सामने वाले ने प्रतिकूल व्यवहार किया, कुछ बोल दिया, तो दुनिया में तो कई कहती है ना कि भाई देखो ये क्या बोल रहा है, अच्छा उसका अपना मुख है वो बोल रहा है, लेकिन मेरा अपना मन है, मैं सोच रहा हूं, बोलना उसके हाथ में है और सोचना मेरे हाथ में है, तो मैं पहले किसको बदलूं, बोलने वाले को जो मेरे हाथ में नहीं है कि सोचने वाले को जो मेरे हाथ में है। तो जो सहनशील व्यक्ति होगा वो अपनी सोच को बदलेगा, ठीक है इसके बोलने से मेरा क्या जाता, बोलता रहे गलत बोल रहा है, निंदा कर रहा है, बात को बड़ा चढ़ा के कह रहा है, अपमान कर रहा है, मेरी हाथ में मेरा सोच है, मेरी विचार मेरी मुट्ठी में है, मैंने अपने विचार को बदल दिया, मैंने विचार को बदल दिया, उसके बोल का मेरे पे असर ही नहीं आ रहा क्योंकि मैं सहनशील हूं। सहनशील नहीं हूं क्यों नहीं हूं, क्योंकि मेरे में ईगो है, ईगो सहनशीलता को खत्म करता है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, ये ईगो है। और सहनशील होगा नम्र होगा वो क्या कहेगा, मैं तो एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मेरा बिगड़ता ही क्या है, मेरे को लगता ही क्या है बोलने का, मैं तो बाबा का बच्चा हूं। तो जितना हम अपने स्वरूप में होंगे, नम्र होंगे, उतने सहनशील होंगे और उतने हम अपने को मैनेज करेंगे, अपने को दूसरे को मैनेज नहीं करना है। मुझे इच्छा थी कि मुझे बहुत मान मिलेगा, लेकिन सामने वाले ने तो मेरी जो अपेक्षा थी उससे बहुत कम मुझे मान दिया, तो मेरी अपेक्षा थी इसलिए मैं असंतुष्ट हूं। मैंने अपेक्षा ऊंची क्यों रखी, अब मान लो मेरी जेब में 1000 रुपए हैं और मैं दुकान पे जाके सोचता हूं दुकानदार मुझे 5000 वाला गलीचा दे दे, कैसे देगा, 1000 रुपए में तो 1000 वाला ही गलीचा मिलेगा, 500 वाला तो मिल सकता है, 1500 वाला नहीं मिल सकता। तो मैंने जो मेरा स्वरूप है उससे ऊंचा एक्सपेक्ट किया ही क्यों, मैं जो हूं उससे थोड़ा नीचा ही एक्सपेक्ट करके जाऊं, भाई सामने वाले के पास होना हो, दुकानदार 5000 वाला तो देगा नहीं, हो सकता है 1000 वाला ना हो तो 500 वाला तो ले ही सकता हूं। अर्थात मैं जितना अपने को ऊंचा मानूंगा उतना मैं हर्ट हो जाऊंगा, उतना ही मुझे चोट लगेगी, इसलिए मुझे अपेक्षाएं भी नहीं रखनी है। मान लीजिए मैंने कोई काम किया, कई भाई बहन कहती हैं कि अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आदमी संतुष्टता के साथ ही तो आगे बढ़ता है, जब मन संतुष्ट हो, मन पॉजिटिव हो, मन में उमंग हो, तभी तो आगे बढ़ा जा सकता, मन ही असंतुष्ट है, उमंग है ही नहीं, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तब आगे कैसे बढ़ेगा, तब तो वो पीछे खींचेगा, पुरानी बातें याद करता रहेगा, उसने ये कर दिया ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फिर आगे की यात्रा कैसे तय होगी। आज तक जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, मैं उससे संतुष्ट हूं और जो हुआ उसको मैंने एक्सेप्ट किया, फुल स्टॉप लगाया, अब मैं कूल एंड काम मनस्थिति से आगे बढ़ रहा हूं, तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। इसलिए जो बीत गया जो हो गया वो वैसे ही होना था, उसी में कल्याण था, उसको मैंने फुल स्टॉप लगाया और स्वीकार किया। अब मेरी 100% मनस्थिति मेरे साथ और अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो जितने सद्गुण है, मैं अंतर्मुखी हूं, मेरी एनर्जी बचती है, मैं हर्षित मुख हूं, हर बात में हर्षित रहना जानता हूं, तो मैं दूसरों को भी हर्षित करता हूं। तो जितने भी सद्गुण हैं, सत्यता पवित्रता नम्रता ये जितने भी सद्गुण हैं इनके आधार पे हम खुद भी संतुष्ट रहते हैं, निर्व्यर्थ रहते हैं, और जब हम खुद निर्व्यर्थ हैं तो दूसरे को भी व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए जब हम कर्म क्षेत्र पर जाएं तो हमें देखना है, अगर कभी असंतुष्टता आती है तो हमें देखना है कि किस गुण की कमी के कारण असंतुष्टता है, कौन सा गुण मेरे में कम है जिसके कारण घड़ी घड़ी मन अपसेट हो जाता है। एक मिनट चलिए ये भी अभ्यास कर लेते हैं, अभी अपने भीतर उतर करके देखेंगे कि मैं बार बार अगर असंतुष्ट होता हूं या कभी कभी भी होता हूं तो किस गुण की कमी के कारण होता हूं, और इस सब्जेक्ट की कमी को भी अगर अपने को पूरा करना है तो इसके लिए भी एक योजना बनानी पड़ेगी कि कौन सा गुण है जिसकी कमी है, और फिर उस गुण के बारे में अभ्यास करना पड़े। जैसे अभी हमने कहा सहनशीलता, तो बाबा ने कहा था कि सहनशीलता की बच्चों को लौकिक कर्म क्षेत्र पर बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हंस और बगुलों को इकट्ठा रहना पड़ता है, तो ऐसे समय में हमको ये महसूस करना है कि सहनशीलता मेरा कवच है और मुझे इस कवच को पहन करके रखना है हमेशा। इसी प्रकार देखना है कि मेरे में नम्रता की कमी है, जब अपन चेकिंग करेंगे और जिस गुण की कमी अपने में महसूस करेंगे फिर अपने को उसी गुण के ऊपर बार बार अभ्यास करना है, अटेंशन देना है। और जो चौथा सब्जेक्ट है वो है ईश्वरीय सेवा। बाबा ने मुरली में कहा था कि निरंतर स्मृति स्वरूप होना अर्थात जागृति ज्योति बनना, और जो बच्चे जागृति ज्योति बन के रहते हैं उनसे ऑटोमेटिक सेवा होती रहती है। जैसे दिया जल रहा है, अभी हम जागती ज्योति बन के बैठेंगे,